आत्मा में ही सीमित रहता हुआ परमात्मा में रमण करता है, वह निर्वर्तक समाधि है। इससे शब्द और प्रतीति का कोई विकल्प नहीं रहता, तथा इसे निर्विकल्प समाधि भी कहते हैं। इस पर स्थूल के पदार्थों में होने वाली संप्रज्ञात समाधि के भेद बताकर अब सूक्ष्म ते के संप्रज्ञात समाधि के दो भेद बताते हैं। इत एव सा विचारा निर्विचारा चा सूक्ष्म विषय विख्याता। सूत्र का भाव है इस सावतर्क और निर्वतर्क समाधि के कथन से ही सूक्ष्म पदार्थ में की जाने वाली साविचार एवं निर्विचार समापत्ति कहलाती है। व्याख्या ये है, जिस प्रकार स्थूल के पदार्थों में की जाने वाली समाधि वे समाधि के दो भेद होते हैं, उसी तरह सूक्ष्म पदार्थों से चित्त को स्थिर किया जाता है। पहले उसके नाम रूप ज्ञान में भिन्नता मालूम होती है, वह साविचार समाधि है, और कुछ दिनों के अभ्यास के बाद जब चित्त को नाम का ज्ञान का और अपने स्वरूप का बेस्मरण हो के केवल ते पदार्थों का ही अनुभव होता है, वह निर्विचार समाधि है। सूक्ष्म पदार्थ केड़े कड़े पदार्थ होंगे उदे बारे दस दे। सूक्ष्म विषयत्व चा लिंग परवसानम। सूक्ष्म विषयता प्रकृति पर्यंत है, परवसानम मैंने ये स्थिति, लिंग मैंने निशान। व्याख्या ये है कि जब समाधि का क्षेत्र सूक्ष्म पदार्थों तक ही सीमित न रहकर पंचभूतों की तन मात्रा शब्द स्पर्श रूप रस गंध तथा मूल प्रकृति पर्यंत जा पहुंचना है, उठे जा पहुंचता है, तो फिर उसे सूक्ष्म कहते हैं। पृथ्वी की तन मात्रा गंध है, जल की रस, तेज की रूप, वायु की स्पर्श, आकाश की शब्द है। पांच तन मात्रा एवं मन सहित इंद्रियां का सूक्ष्म विषय अहंकार, अहंकार का महतत्व, महतत्व का सूक्ष्म विषय प्रकृति है, उससे आगे कोई सूक्ष्म पदार्थ नहीं है। यही सूक्ष्मता की अवधि भाव हद सीमा है, इसलिए प्रकृति पर्यंत किसी भी सूक्ष्म पदार्थ को लक्ष्य बनाकर उसमें की हुई समाधि को साविचार और निर्विचार समाधि ही जानना चाहिए। ये चारों समापत्तियां सभी समाधि है, इसके बारे दस रहे हैं। साविजा समाधि, वे कहते सब समीज समाधि है। पिछले सूत्र विच जिन आधार सहित सावतर्क तथा निर्वतर्क और आधार रहित साविचार एवं निर्विचार समाधियों का वर्णन किया है, वे सभी सुवीज समाधियां हैं। इनसे समस्त दृष्टियां का पूर्णता निरोध न होने से कैवल स्थिति तक पहुंचना नहीं हो पाता, फिर भी साधु को बहुत ऊंची स्थिति तक ले जाने में समर्थ होती है। ये नहीं कि तो प्राप्त नहीं होता, बहुत प्राप्ति होती है। उनकी पृथक पृथक स्थिति दसते हैं। पहला सावतर्क समापत्ति स्थूल पदार्थों शब्द और अर्थ ज्ञान के विकल्पों से मुक्त भाषणे वाली चित्त वृत्ति होती है। दूसरा निर्वतर्क समाधि में शब्द रूप ज्ञान की भिन्नता नहीं रहती है, साव तीजा सावचार सूक्ष्म विषय में देश काल और निमित्त धर्म के विकल्प रहते हैं। चौथा निर्विचार सूक्ष्म विषयों में देश काल धर्म के विकल्पों से रहत हो जाती है। निर्विचार की उच्चतर आनंद अनुगत और असीमता अनुगत है। इन चारों में कहते कौन अधिक श्रेष्ठ है तो दसते हैं। निर्विचार वैशारदी अध्यात्म प्रसादा सूत्र का भाव निर्विचार समाधि अत्यंत निर्मल होने पर योगी को अध्यात्म प्रज्ञा की निर्मलता होती है। उसकी जड़ी बुद्धि बड़ी निर्मल हो जाती है। व्याख्या ये है निर्विचार समाधि की ऊंची अवस्था में जब राजतम रूप मल का क्षय हो जाता है, चित्त की मलिनता मिट जाती है, सतोगुण का प्रादुर्भाव सतोगुण प्रकट हो जाता है, होने से फिर निर्मलता प्राप्त होती है। फिर साधक का अंतःकरण प्रसन्नता नाल भर जाता है। जिन्ना मन पवित्र होएगा उन्नी अंदर खुशी आएगी, उसी को विशारद कहते हैं। इसी से योगी को प्रकृति पर्यंत सभी पदार्थों का एक ही काल में साक्षात्कार हो जाता है। जिम्मे हाथी प्यावला नजर आता है, सब कुछ नजर आता है, पर यह अवस्था बिरलिया मिलती है। इसी को अध्यात्म प्रसाद कहते हैं, प्रज्ञा प्रसाद कहते हैं। उस स्थिति में जैसे पहाड़ की चोटी पर खड़ा मनुष्य नीचे पृथ्वी पर खड़े मनुखों को देखता है, इसी प्रकार योगी देखता है। जिम्मे ऊंची जगह थले वाले सारे देखता, वो जरा योगी उन्होंने सारा दृष्टमान हो जाता है। अध्यात्म प्रसाद से योगी को जिस बुद्धि का लाभ होता है वह अगले सूत्र विच दसदे हैं। रतंबरा तत्र प्रज्ञा सूत्र का अर्थ है उस समय योगी की बुद्धि जड़ी रतंबरा, रतंबरा का मतलब होंदा सत धारण करने वाली हुंदी है। अर्थ व्याख्या अध्यात्म प्रसाद के होने पर जहाँ समाहित चित योगी को प्रज्ञा उत्पन्न होती है, उसको रतंबरा प्रज्ञा कहते हैं। अर्थात सत को धारण करने वाली बुद्धि हो जाती है। इससे भ्रांति अविद्या संशय विपर्जय का नाम तक नहीं रहता। इस प्रज्ञा द्वारा सत ही देखा जाता है और सत ही प्रकट किया जाता है, सत ही ग्रहण किया जाता है। इस प्रज्ञा के होने से योग का लाभ होता है। इस बुद्धि से और भी विशेषता है, वो अगले सूत्र विच दसते हैं। सुरता अनुमान प्रज्ञा और प्याम अनविषया विशेष अर्थवात श्रुति और अनुमान से प्राप्त बुद्धि की अपेक्षा यह रतंबरा प्रज्ञा विशेष रूप से अर्थ को साक्षात्कार कराती है, साक्षात्कार करवाती है। इहदे विच इतना बड़ा जो बल दसिया है, शुरती वेद शास्त्र एवं आपत्मनि यथार्थ पुरुषों के वचनों के आधार के प्राप्त होने वाला ज्ञान, अनुमान युक्त प्रमाण के आधार पर स्थापित ज्ञान, इन दोनों के ज्ञान से किसी पदार्थ या विषय की जानकारी सीमित होती है, परंतु रतंबरा प्रज्ञा सत पर आधारित होने से उसके द्वारा छिपे हुए रहस्यों का उद्घाटन हो जाता है। विस्तार जो साधारण बुद्धि से नहीं जाना जा सकता वह भी साक्षात्कार हो जाता है। इसलिए यह श्रुति अनुमान वाली बुद्धि से उत्तम है। ये श्रुति अनुमान का बीज है, अर्थात श्रुति अनुमान इसके आश्रय है, ना के यह उसके। इस रतंबरा प्रज्ञा को विवेक ख्याति के समान जानना चाहिए। इस रतंबरा प्रज्ञा को और भी विशेषता बताते हैं। तज्यजा संस्कारो अनसंस्कार प्रतिबंधो कहते उससे उत्पन्न होने वाला संस्कार दूसरे संस्कारों को रोकने वाला है, जड़ा उससे ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਸੰਸਕਾਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਤੱਤ ਜਾ ਉਸ ਤਰੰਤੰਬਰਾ ਪ੍ਰਗਿਆ ਸੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਸੰਸਕਾਰ ਆ ਅਨ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧੀ ਦੂਸਰੇ ਸਭ ਵਿਉਤ ਥਾਨ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰੋਂ ਕਾ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਕ ਰੋਕਣੇ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਰਤੰਬਰਾ ਪ੍ਰਗਿਆ ਸੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਸੰਸਕਾਰ ਅਨ ਸਭ ਵਿਉਤ ਥਾਨ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰੋਂ ਕਾ ਬਾਧਕ ਰੋਕਣੇ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਤ ਜਾ ਸੰਸਕਾਰੋ ਅਨ ਸੰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਤੰਬਰਾ ਪ੍ਰਗਿਆ ਮੈਂ ਆਤਮ ਤਥਾ ਸੰਸਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰਤੇਕ ਪਦਾਰਥ ਕੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਰੂਪ ਕਾ ਸਾਖਿਆਤਕਾਰ ਤੋ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਥ ਹੀ ਵਹਿ ਅਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇ ਉਨ ਸੰਸਕਾਰੋਂ ਕੋ ਜੋ ਅਨੇਕ ਜਨਮ ਜਨਮਾਂਤਰੋਂ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਬੀਜ ਰੂਪ ਮੈਂ ਕਰਮਾਸ਼ੇ ਮੈਂ ਪੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਕੋ ਸੰਸਾਰ ਚੱਕਰ ਮੈਂ ਭਟਕਾਉਣੇ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਮਿਟਾ ਸਕਣੇ ਸੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕੇ ਨਾਸ਼ ਸੇ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਨ ਸੰਸਕਾਰੋਂ ਕੋ ਵਹਿ ਰਤੰਬਰਾ ਪ੍ਰਗਿਆ ਠਹਿਰਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਤੀ ਉਹਨੇ ਰੋਕਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬੇਸ਼ਕ੍ਰਿਤ ਕਰਤੀ ਹੈ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕੋ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਕੇ ਯਥਾਰਥ ਰੂਪ ਕਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਬ ਉਸਕਾ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਮੈਂ ਔਰ ਉਸਕੇ ਕਾਰਜੋਂ ਮੈਂ ਸੁਭਾਵ ਸੇ ਵੈਰਾਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੈਰਾਗ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਪੂਰਵ ਸੰਚਿਤ ਸੰਸਕਾਰੋਂ ਕਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਸੰਸਕਾਰੋਂ ਕਾ ਨਿਰਾਕਰਨ ਹੋਣੇ ਸੇ ਸਾਧਕ ਸਭ ਭਵ ਬੰਧਨੋਂ ਸੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਵੀ ਸਮਾਧੀ ਉਹ ਸਭ ਸੇ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਕੇ ਅਬ ਨਿਰਵੀ ਸਮਾਧੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਤਸਿਆ ਪਰ ਵੈਰਾਗ ਤਸਿਆ ਕੀ
ਨਿਰੋਧ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਰਵ ਨਿਰੋਧਾਤ ਔਰ ਪ੍ਰਾਤਨ ਨੂਤਨ ਸਭ ਸੰਸਕਾਰੋਂ ਕੇ ਨਿਰੋਧ ਹੋਣੇ ਸੇ ਨਿਰਵੀਜਾ ਸਮਾਧੀ ਨਿਰਵੀ ਸਮਾਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਕਾ ਵੀ ਨਿਰੋਧ ਹੋ ਜਾਣੇ ਪਰ ਸਭ ਕਾ ਨਿਰੋਧ ਹੋ ਜਾਣ ਕੇ ਕਾਰਨ ਨਿਰਵੀਜ ਸਮਾਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੰਤਮ ਅਵਸਥਾ ਮੈਂ ਉਸ ਰਤੰਬਰਾ ਪ੍ਰਗਿਆ ਤਥਾ ਉਸਕੇ ਦੁਆਰਾ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣੇ ਵਾਲੇ ਉੱਚ ਸੰਸਕਾਰ ਕਾ ਵੀ ਨਿਰੋਧ ਹੋ ਜਾਣੇ ਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇ ਸਭ ਸ਼ੁੱਧ ਬੁੱਧ ਕਾ ਨਿਰੋਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਬ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਕਾ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਕਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੀਜ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾ ਰਹਿਣੇ ਸੇ ਨਿਰਵੀ ਸਮਾਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਨਿਰਵੀ ਸਮਾਧੀ ਕੀ ਅਵਸਥਾ ਮੈਂ ਚਿੱਤ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਬਿਰਤੀਓ ਕੋ ਰੋਕਣੇ ਵਾਲੇ ਸੰਸਕਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹਿਤੇ ਹੈ ਜਿਨ ਕੋ ਮੈਂ ਸੰਸਕਾਰ ਸ਼ੇਸ਼ ਕੇ ਨਾਮ ਸੇ ਵਰਣਨ ਕੀਆ ਹੈ ਇਨ ਸੰਸਕਾਰੋਂ ਕੇ ਕਾਰਨ ਚਿੱਤ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਸੇ ਬਿਰਤੀਓ ਕੇ ਰੋਕਣੇ ਕਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਚਿੱਤ ਮੈਂ ਇਸ ਨਿਰੋਧ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੇ ਕਾਰਨ ਪੁਰਸ਼ ਕਿਸੀ ਬਾਹਜ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੰਤੂ ਸ਼ੁੱਧ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰੂਪ ਮੈਂ ਅਬ ਸਥਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਚਿੱਤ ਪੁਰਸ਼ ਕੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਲਾਨੇ ਕੇ ਕਾਰਜ ਕੋ ਔਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਵਰੂਪ ਮੈਂ ਅਬ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਸਕਾਰ ਸ਼ੇਸ਼ ਵੀ ਫਿਰ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸੰਸਾਰ ਕੇ ਬੀਜ ਕਾ ਸਰਵਥਾ ਅਭਾਵ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਕਾ ਨਾਮ ਨਿਰਵੀਜ ਸਮਾਧੀ ਹੈ ਇਸੀ ਕੋ ਕੈਵਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਤੀ ਪਤੰਜਲੀ ਯੋਗ ਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਧੀ ਪਾਦ ਸਮਾਪਤ ਪਹਿਲਾ ਅਭਿਆਸ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।